सीता जी को राम अग्नि के साक्षी देकर के विवाह करके लाए। इसलिए इस महल के अंदर में आपके समय में आपका कोई भी अधिकार नहीं है, सेवा का ये सीता जी का अधिकार रहेगा और बाहर की जो सेवाएं हैं आप करेंगे। लक्ष्मण जी रोते 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 भागने लगे, ये एक पहली बात। और दूसरी बात क्या है, मारिकी ने जबकि राम लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण कहा, उस समय लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। सीता जी ने कहा तू भरत का क्या स्पाई है,
गुप्तचर
है, तू हमें मार राम को मरवा करके और तू हमारे हमको अपना बनाना चाहता है स्त्री, ये कदापि संभव नहीं लक्ष्मण, हमारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं जल करके मर जाऊंगी, तेरे साथ नहीं रह सकती, ये सीता नहीं है। इतना कठोर वचन सुनते ही लक्ष्मण जी रोने, आज नारायण ने क्या होना है, जिस लक्ष्मण जी ने उनके पैर के अतिरिक्त और कहीं देखा ही नहीं था, आभूषण तक और मुख तक नहीं देखा, आज ऊपर यह आरोप चले गए, एक अपने धनुष से रेखा खींच गए और चले गए। जो हुआ तो आप जानते हैं, रावण आया किंतु उस रेखा को लांग नहीं करा, जब ही पैर था आग निकलती गिर सुई नहीं पा पाया, अंत में किसी प्रकार से सीता जी को बाहर लेकर के और सामने लिया। तो सीता जी ने कहा तुम्हारे चरणों में अपराध के कारण ही हमारा ये हो रहा है, तो सीता जी कह रही है जब मैंने हे सभाओं सभा के लोगों और आप सभी लोग सुने, वाल्मीकि जी भी सुन रहे हैं, मैं सचमुच में यदि निष्कलंक हूं, यदि मैंने तन से मन से वचन से राम के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं किया तो हे धारित्री तुम मेरी मैया हो, तुम जल्दी से फट जाओ, मुझे अंगीकार हो। तीन बार ऐसे कहा हे धारित्री यदि मैं सचमुच में पवित्र हूं, तन मन से मैंने राम के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं किया, मैं कहूंगी तो आप जल्दी से मुझे अपनी गोदी में ले लो, इतने में एक सेकंड का तो मैं पृथ्वी फटी और उसने सोने के सिंहासन पर पृथ्वी दे दिया और सीता जी को झट अपनी गोदी में ले लिया और एक सेकंड के अंदर में पृथ्वी टूट गई और वो लेकर के चली गई। हम सब ध्यान दूर अब नाम हाहाकार करके सारी सभा एकदम गृह में आतुर हो गई और मैया मैया कह करके लौटू छोटा सा बच्चे छोटे बच्चे राम से कहा, सभी लोग राम बोले धनुष उठाया, देखो तू मेरी सास लगती है, मैंने इस शरीर धर्म से समुद्र को मैंने सुखाने की चेष्टा की थी, यदि नहीं मार देता तो मैं सुखा देता, आज मैं तुम्हें चकना चुका दूंगा इस धर्म से यदि मेरी पिता को नहीं लाए, यहां हंस बाढ़ लेकर के तैयार हैं मारने के लिए, इतने वाल्मीकि जी बोले। आप तो जानते हैं जो होना है तो होना है। अब सीता जी आपके लिए वहां पर साकेत में प्रतीक्षा कर रही है, अब इसमें नहीं, अब फिर आपको लीला का अनुभव करना, आप धैर्य धारण कीजिए, वाल्मीकि रामायण जो हमने रचना की है उसके अनुसार में सारी लीलाओं का होना है। इस तरह से राम को धैर्य दिया, फिर राम लौकुश को साथ लेकर के अपने भाइयों को साथ लेकर के जब जब आप किसी प्रकार से समापन करते अयोध्या में और कुछ दिनों के बाद में बच्चों को सबको अपनी अलग अलग राजधानी बना करके सबको दे दिया और सारे लोगों के साथ में भाइयों के साथ में सर्ग में गए, वहां पर आकाश से यज्ञ स्नान किया, सब ईमान आए, सब चतुर्भुज दो रूप धारण होके सभी को लेकर के पड़ोसिया बलराम चंद्र की। इन कथाओं के सुनने से ही हृदय में भगवान समाप्त, भगवान का आविर्भाव, वो हृदय को निर्मल कर सारी आसक्तियों को काट कर धीरे धीरे जो आपके चिंता से नहीं होगा, इन लीला कथाओं के माध्यम से चित्त को निर्मल करके भगवान, इसको निर्मल करके भगवत भक्ति अपने आप आकर्षित कराते हैं। इसलिए यदि संसारिक आसक्तियों को छोड़ करके भगवान के लीला कथाओं का स्मरण किया जाए और सहज ही भगवान का नाम किया जाए तो भक्ति कोई झूठ नहीं, वो तो हमारे हृदय में है ही, उनके प्रति तो हमारा भाव है, बस उठाने की माया, उठने की जरूरत। इसलिए आप लोगों का भी ऐसा ही कर सकते हैं, इन कथाओं को सुन करके इसका पालन करके और सही और सागर को पार करते। राम नाम को अंक है सब साधन है तुम, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। यदि एक लिखो उसके बाद में जीरो जीरो दो तो ठीक, ये जितने साधन है वो शून्य है और राम का जो नाम है क्या है अंक है, इसके ऊपर में एक शून्य दो तो क्या हो जाएगा दस, दो 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 ये तो चल हजार सुना देते चले जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ एक अरब दस अरब खरब दस खरब मील नील पद्म। किंतु यदि एक को हटा करके भजन को हटा करके और सब करो, सब कुछ जब सब ध्यान सब कुछ करो, कुछ नहीं भैया जीरो जीरो। इसलिए कलयुग केवल नाम अलग अलग हूं, जिस प्रकार से भी नाम करो भाव कुभाव अलग अलग सब अलग से करो, चलते फिरते चित्ते में भी राम नाम आ जाए कृष्ण कृष्ण आए तो भी मंगल व्यक्ति। किंतु एक बात है, वैष्णव के चरणों में अपराध यदि हो नहीं और वज्र हो जाएगा, इसलिए वैष्णव के प्रति खूब धन्य व्यवहार करते हुए भगवान के लीला कथाओं का स्मरण करो, उनका नाम कीर्तन करो। कलयुग में इससे और कोई भजन दूसरा नहीं, संसार के सभी कामों को करो, आसक्ति को छोड़ने के नहीं सोचे तो भी लीला कथाओं के श्रवण से ही वो हो जाएगा। किंतु जो तुम्हारे वश में है प्याज लहसुन मांस मछली और शराब शराब खाना की क्या जोगान और ये सब, ये तो तुम्हारे नाम की बात है। अरे महाराज जी मैं सिगरेट या बीड़ी तो छोड़ दूँ किंतु सिर में दर्द हो जाता है पैखाना नहीं उतरता। क्या करें, अरे तुम्हारा पैखाना देखो पूरे दिन में जब से तुम बीड़ी और सिगरेट और ये सब जो है खाता था जिससे पैखाना नहीं उतरता। अभी डॉक्टर कह देगा जैसे अभी देखो अभी शराब खाने से पीने से या जोगेन खाने से अभी तुम मर जाएगा, बस बंद हो जाएगा उसी दिन एक दिन एक मिनट की भी लंबी। और हम लोग साधु बच्चे हैं हमारी बातों पर विश्वास नहीं, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके भगवान का भजन के लिए सर्वरूप में और सुखी रहिए। गौ प्रेमानंदे बलौतिया वर रामचंद्र की जय,
बजरंगबली हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरे कृष्ण देवी गौरव श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव कवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणय विस्तो गंधवत प्रणाम संत प्रभोशी अपना दीक्ष गुरु हृदय गए ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद एसी भक्ति ग्रंथ स्वामी महाराज प्रभु खान प्रणय विस्तो गंधवत प्रणाम अंतर्भवीक्ष गुरु गए हृदय गए ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति ग्रंथ Narayan Goswami Maharaj. And I offer my obeisances and respects to all of the elevated Vaishnavas present, all the learned pundits present, and all of the respectable ladies and gentlemen present in this assembly, in which the auspicious, most auspicious discussion of Harikatha, the divine Leela, and Siddhanta pertaining to the Absolute Truth has been going on here for the past 5 days. Srila Gurudev is asking me to make some mention about the importance of doing bhajan in this human form of life. And he is saying that in the present condition of this world, in this present time, Kali Yuga, we are seeing that the world has become advanced in technology. Through so many different types of inventions, the modern materialistic civilization has advanced in terms of communication, in terms of transportation, and it is very easy to go from one part of the world to another very rapidly. In medicine, they have made so many different advances. So in this way, it appears that human civilization is going forward. But in actuality, what has occurred is human civilization has gone backwards. Why is this? Because the human society is no longer able to give satisfaction to the heart. No one is happy because of these material advances of civilization. Nowadays we see that even if someone has accumulated vast amounts of wealth, and they are able to purchase anything they desire, still, there are so many circumstances where such persons have become so frustrated in their life that they have taken their own life. They have committed suicide. If it were the case that through material prosperity and accumulation of material objects and wealth and trying to satisfy one's own senses of this body, that one could become fully happy, then the wealthiest people in this world would be considered to be successful and happy. But yet we see that this is not the case. Because in actuality, our true necessity of life is not to satisfy the requirements of this material body and of this material mind which we have. The sukshma sarir and the stool sarir. The gross material body and the subtle body. We have heard so many discussions over the past few days. So many quotations from Vedic Shastra, from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, explaining what is our real identity. That actually, we are Atma. We are eternal souls. And this material body which we have is a temporary dress only. It is a temporary garment, which we are wearing for a very short period of time. But this body has actually been acquired by us after a very long period of time. How long? Many lifetimes, many millions of lifetimes. We should be conscious of this fact, actually, because the human form of life is very difficult to achieve. Lakvasudurvamidam bahusambhavante. This means that after many lives, samvavante, after taking many births and dying many times, in many different species of life, animal species, plant species, aquatic species, and so many others, we finally get this gift of the human body. What is the importance of this human body is what we should understand, and the Vedas are telling us this. That manushyam arthadam anityam apiha jira, that although this temporary life that we have in this human body is very short, but actually it is arthadam. It can give so much benefit to us. And what is that benefit? That we no longer have to remain here within this world of suffering, within this world full of so many miseries, full of so many frustrations, birth and death repeatedly. But we can actually elevate ourselves beyond this temporary plane to an eternal realm where there is full happiness and bliss. And that is our real home.
because this material world is simply a temporary place we must leave here. Within a matter of a few short years, we will be picked up. And then where will we go? So if we understand the importance that this human form of life will provide us with the greatest achievement, that we can transfer ourselves from this material plane to the eternal plane, where we can exist eternally in full happiness. That is called Satchidananda existence. Our eternal nature is such, but we have forgotten this fact. So now we are trying here to satisfy this body and the temporary senses of this body, because we have forgotten what is our true nature. There is one very nice little story, just like one man had a golden cage for keeping one bird. So he placed this bird inside of a golden cage. And this golden cage is very beautiful, shining very nicely. And this man was very proud of this golden cage. But pay so much attention to our needs and our necessities within this temporary life that, oh, I must provide such nice home, such nice shelter, so many nice eatable foods. I must give so much gratification to my senses of this body, purchase very new clothes. I must have very fashionable this and that. But we are forgetting to pay attention to our real necessity of our true eternal nature within. So therefore, it is stated that Purnam Patesana Patim Anamrityava, that we should not lose this opportunity. It would be a very, very great loss if after attaining this human form of life, after many births and deaths, that we receive this opportunity in which we can utilize our human intelligence to understand the Supreme Being, God, Krishna, Bhagavan, Ram, that we can understand the Supreme Personality of Godhead. But yet if we lose this opportunity and we fall back down into the lower species, again it is possible. We hear from Srimad Bhagavatam, so many different stories are there in the Vedas also, that if we make the mistake of not utilizing the human form of life properly, it is possible to lose this opportunity, and we will be delayed again for many lifetimes of achieving our real necessity of life, arthanam. So, we must not preoccupy ourselves in this human form with simply trying to acquire that type of happiness which is available even to the lower species. They are eating, they are having families, they are enjoying their senses, but if we also try to simply perform the activities that the lower species are performing, then our human life is wasted. So the purpose of human life is to perform bhajan, to reconnect ourselves with our eternal relationship with the Supreme Lord, and to attain our eternal nature, which is full of happiness, full of ananda, which cannot be achieved here within this world. But if we take shelter of the Vedic knowledge, and if we approach saints, sankas, who actually have full realization, they are tattvavid, they fully understand these Vedic truths, and we approach them very humbly and inquire from them very submissively, and we hear their words and we serve their lotus feet, then we will have qualifications to advance ourselves in our spiritual life, and we can attain full perfection. This is the opportunity available to us. And although this age of Kali is full of so many different disqualifications and faults, in this age we are living a very short period of time, maximum 100 years. And nowadays it is very rare to see someone living so long. Generally, they are dying even at 50, 60, 70 years of age. Very few people live that long. So our time is very short and very limited, and so much of this time is taken up in our youth, simply studying to acquire knowledge how to live within this world. So whatever time that we have remaining within this body, we must try to utilize fully, 100%. And the best utilization of this time is to perform bhajan, especially harinam sankirtan. Because this performance of harinam sankirtan in the age of Kali Yuga is the recommended process for this age. In the Upanishads it is stated, Harirnama, 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 Eva Kevanam, Kalo, Nasyeva, 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 Gadir Anjata. That by performance of chanting of the holy names of the Supreme Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, especially this Mahamantra, by this process, in the age of Kali, we can attain perfection. And it is stated, Nasdeva, 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 three times. To emphasize that if we try other processes in this age, if we simply perform ritualistic processes of the Vedas, we try to perform different types of yajnas, fire yajnas and such, there are so many different types of performances of yajnas. And if we try to even perform yoga or ashtanga yoga, or if we simply try to study through jnana, or even through karma yoga practices, this will not give full perfection unless we are chanting the holy names of the Supreme Lord. So it is stated at the very end of the Srimad Bhagavatam, at the conclusion of the Srimad Bhagavatam, after Sukadeva Goswami has spoken to Parikshit Maharaj, finally at the very end of the 12th canto, he says to him, Asti Yeko Mahat Gunam, Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangam Param Vrade. That this whole age of Kali is like an doshanidhe. It is like an ocean of dosh, of faults. So many different faults in this age. We live a very short period of time. We have very weak minds, very weak bodies in this age. There are so many ways of becoming misled in this age and cheated. And always the mind is disturbed by so many things. So therefore he says, oh King, in this age, there is one very great quality, mahaguna, very great quality. What is that? Kirtanad eva krishnasya mukta sangha param prade. Simply by performing Krishna kirtan, kirtanad eva krishnasya mukta sangha param prade. One can attain full liberation. One can re-establish his eternal relationship with the Supreme Lord, and one can go back to his eternal home, back to that eternal dham, which is known as Sri Vrindavan Dham. So we request everyone that they take full advantage of the association which has been provided so wonderfully by our Panditji, that they have brought our Gurudev here. He is going to complete his 5-day presentation of transcendental knowledge, and if we are truly wanting our full benefit, then we will take his instructions into our life, and we will try to practice them within our life, and surely we will attain perfection through this. Hare Krishna, thank you.
Chakshurunmilitangena tasmai Sri Gurave
namah. Vanchakau tatrubhyascha kritasindhubhya eva cha patitanam pamanebhyo
vaishnavebhyo namo.
Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaurastite Gurave Gaurachandaya Radhikaya Sadale Krishna Krishna Bhaktaya Sarabhaktaya Namo Namah. Yam Praprajan Tamante Tamape Chatrishyam Dvaitayano Viraha Sataraya Jihau Putre Kitanvaitaya Sarvo Bhinedo Sankarva Bhutavidayam Munimanutoshi Savai Vashmi Savai Vashmi Najimavishwaya Vina सप्रथम में अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में पुनित दंडोत्पन्न की ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात वैष्णवगण, सज्जन सुधी वृंद, माताएं बहने और बेटियां, आज हम लोगों का पंचम दिवस और अंतिम दिवस है। आप लोग इस दो दिन में भी इतने लोग सुनने के लिए आते हैं या इससे हम आपके आधारित। मैं कथा आरंभ करने के पहले दो एक विषयों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, जो यहां के कुछ श्रोताओं के द्वारा पूछे गए हैं। पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आजकल जो इस्कॉन संस्था है, मैं इसकी ओर से प्रचार करने नहीं आया। आपके इस्कॉन से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है और संबंध नहीं है। मैं अपने गुरु परंपरा गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के विचारधाराओं के अनुसार सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं। स्वामी जी भी उसी के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिसको कहते हैं आजकल लोग, वो उसी के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भी सर्वत्र आए थे। उन्होंने प्रचार किया था, उससे हमारा मधुर संपर्क था। वो हमारे गुरु जी से संन्यास अवलंबन किया था, इसलिए हम लोग गुरु भाई भी हैं और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझता था। किंतु उनके परलोक गमन के पश्चात आधुनिक जो संस्था है कुछ विपक्ष में चलने लगी। हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से बहिर्मुख हो गई। बहुत से सीनियर और सिंसियर डिवोटी जो थे, जो प्रभुपाद जी के भी बहुत प्रिय थे, उन लोगों ने फोन छोड़ दिया, क्योंकि देखा शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं रहा। जो रहे बाकी भी, वो लोग अधिकांश 95% से अधिक भ्रष्ट होकर के नीचे चले गए। यहां पर जिनके मंदिरों में वैष्णवों का जाना, भक्तों का जाना निषिद्ध है, बतलाइए वो कैसे कोई धर्म स्थान हो सकता है। वहां पर भी मैं समझता हूं कि भगवान या गुरु नहीं रहते, इसलिए इन लोगों से हमारा संपर्क में। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि वैसे ही देश, वैसे ही तिलक, वैसे ही माला, इसलिए एक समान समझते हैं कि तो बात यह गलत फहमी है। वो हमारे हमसे, बल्कि इसको कहिए तो हम लोगों से पैदा हुआ। प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने हमारे गुरु जी से संन्यास किया मथुरा में और इस देश में विचार करने के लिए आया। इसलिए उसका जन्म हमारे गौड़ीय ये वैष्णव संप्रदाय से ही होता है। यदि उसके वसूलों को नहीं मानते हैं तो उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं, हमारा भी संपर्क नहीं। हम उनका कल्याण चाहते हैं, वो हमारी विचारधारा में आए, वैष्णवों का सम्मान करना सीखें, समस्त प्राणी मात्र का सम्मान करना सीखें, तब वो वैष्णव हो सकते हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे एक प्रिय बंधु ने पूछा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के लिए क्या चीजें हैं, इसका पार्थक्य कहाँ है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानना। इसलिए संक्षेप में दो शब्दों में इसका भी उत्तर देना कुछ ही समझता हूं। प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगने, लगन को कहते हैं प्रवृत्ति। जब कोई व्यक्ति इन आसक्ति के साथ इन सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होकर गृहस्थ धर्म या सांसारिक धर्म का अवलंबन करता है तो उसे प्रवृत्ति मार्ग का चलने वाला कहा जाता है। अर्थात सांसारिक धर्मों में प्रवृत्त होने वाला वो भी आसक्ति के साथ में यदि हो तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है साधारण रूप। और जो सांसारिक धर्मों को संपूर्ण रूप से प्रत्याग कर परमार्थ का अनुशीलन करता है उसे निवृत्त मार्ग कहते हैं। अब इसको थोड़े से और समझा विशेष थोड़ा विशद रूप में प्रवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार के हैं जिनका संपर्क परमार्थ से कुछ नहीं संसारिक कार्यों में लिप्त हैं संसार में विवाह शादी कर अर्थ उपार्जन और उसके द्वारा सुखी होने की चेष्टा में जो प्रवृत्त होते हैं वो
क्या वो गृह
गृह में भी कहलाते हैं एक गृह में भी एक गृहस्थ गृह में भी वो हैं जो विवाह